shouldn't they?
Vad var det till? Visst nu är som är nära chakrat nu. Kjär nära chakrat kringi? Chart subject ko to achi tarah se jante ho. To is varsh ka yahi chart rakhna ki charo hi subject mein, chahe gyan mein, chahe yog mein, dharna mein, seva mein, har subject mein koi na koi navinta lani hai. Gyan, arthat samajhdar banna, samajh dena aur samajhdar ban chalna. Gyan mein bhi navinta ka arth hai, jo अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना, ना से हा हुई तो नया हुआ ना। इस रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। अगर आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई ना। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ, तो चारों ही सब्जेक्ट में स्व के प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहयोगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ाना माना नवीनता। किसको दुखी, किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, यह तो कॉमन चार्ट है। यह तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वह भी लिखती है। आप रॉयल प्रजा हो या राजा हो, तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है? और हर 3 मास में रोज का नहीं यहाँ भेजना, काम बढ़ जाएगा। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि नया वर्ष है तो नया चार्ट, चार सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानते हो, तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा कोई ना कोई नवीनता लानी है। सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान में क्या नवीनता लाएंगे? तो बाबा कहते हैं समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना, ना से हाँ हुई तो नया हुआ। तो ज्ञान में क्या नवीनता लाएंगे?
कमी को धारण किया,
ऐसे ही लिखना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया।
मतलब समझ आ गई उसको, कि सारी
कमी है, कमी है उसको धारण किया, कमी को नहीं।
चलो ज्ञान में क्या नवीनता लाएंगे? हर चीज में नवीनता चाहिए। ज्ञान तो है, मुरली में क्या नवीनता लाएंगे? सुन रहे तो है, रेगुलर सुन रहे, नवीनता क्या? कल कहा ना रेगुलर और पंक्चुअल, ये कल रह गया था पंक्चुअल। जैसे सुनने में रेगुलर और पंक्चुअल हो, वैसे सहज योगी, निरंतर योगी बनने में रेगुलर और पंक्चुअल उसके मार्क्स। तो ज्ञान में क्या नवीनता लाएंगे? मुरली पढ़ना, सुनना, ये तो कर रहे हैं, या पॉइंट्स नोट करना, ये भी कर रहे हैं, कोई कोई उसकी थोड़ी चर्चा भी कर रहे हैं, कोई कोई उसको याद रखने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, कोई कोई याद रख के सुनाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। नवीनता क्या लाएंगे? सुनते सुनते धारण करना, और
चिंतन
किस पर? चिंतन कोई पॉइंट पर,
स्वरूप,
चिंतन स्वरूप बनना तो बहुत बहुत ऊंची अवस्था है, तुरंत नहीं होगा वो। नवीनता में क्या क्या? मुरली हमारे सामने है, उसमें अब नवीनता क्या लाएंगे, पढ़ने में नवीनता वहां से चालू करो, मुरली सामने है, पढ़ने में नवीनता, सुनाने में नवीनता, समझने में नवीनता, चिंतन करने में नवीनता, धारण करना उसका परिणाम है, वो अपने आप धारण होगी, ये सब करें किए तो। सुनने में, पढ़ने में क्या नवीनता लाएंगे, मुरली
ज्ञान
मंजू बहन मुरली
मुरली में से ही मतलब है ज्ञान, लेकिन उसी में से योग के लिए कुछ पॉइंट्स निकाल,
अलग अलग पॉइंट्स निकाल लेना, धारणा की पॉइंट्स कौन सी है, योग की पॉइंट्स कौन सी है, ज्ञान की पॉइंट्स कौन सी है, मुरली से ज्ञान की पॉइंट्स कौन सी है, धारणा की और सेवा की, उसको अलग अलग कर देना, केवल लिखना मात्र नहीं, बुद्धि में कि आज की मुरली में ज्ञान से संबंधित ये बातें थी, योग से संबंधित ये बातें थी, धारणा से संबंधित ये बातें थी और सेवा से संबंधित ये बातें थी, एक तो ये पढ़ते समय इस्तेमाल करना, वो यूज तो करेंगे फिर, और पढ़ने में क्या नवीनता लाएंगे,
भाषा का भाव समझ
नवीनता,
उसमें नया पॉइंट कौन सा है,
तो नया कौन है जो आज तक हमने जो हमारे लिए नया क्या है इसमें, वो कुछ कुछ पॉइंट रोज रोज रिपीट हो रही है, पर उसमें से नया क्या है, या फिर कोई पुराना ही पॉइंट पर नए ढंग से पेशकश प्रस्तुति प्रस्तुतिकरण जो है वो नए ढंग से है इस बार, वो कौन सा है, नए भाव नया नवीनता क्या है उसमें, वो ढूंढना कि ये पॉइंट नया है आज की मुरली से, जो आज तक हमने सुना नहीं था, आज तक हमको पता नहीं था, ये कुछ तो नया है, एक तो दूसरा ही, और
अभी जो मेरे को जरूरत है पुरुषार्थ,
हाँ उसमें मेरे लिए कौन सा पॉइंट है इसमें से, नया हो गया एक, दूसरा मुझे किस पॉइंट की जरूरत है आज की जो मुरली है इसमें, ऐसी कौन सी वो बात है कि जिससे मेरा पुरुषार्थ बढ़ जाए, और पढ़ने में क्या नवीनता, बाहर पढ़ना बराबर प्रकृति, एक है कमरे में पढ़ना, एक है खुली हवा में पढ़ना, खुली हवा में प्रकृति के सानिध्य में, उसमें बहुत 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 अंतर है, कमरे में बंद कमरे में बैठकर पढ़ना, वहां चिंतन इतना नहीं हो सकता जितना आप खुली हवा में पढ़ते हो, प्रकृति के सानिध्य में पढ़ते हो, समुद्र पहाड़ी झरना झील यहाँ जो पढ़ते हैं और जो कमरे में पढ़ते हैं उसमें बहुत अंतर है, वहां पर बुद्धि खुलती है, बहुत नई नई टचिंग्स होती है, नए नए पॉइंट्स आते हैं, हमारे देखने का जो आयाम है डायमेंशन है वो बदलता है, वहां पर दृष्टिकोण बदलता है, तो वो पढ़ने में वो भी एक नवीनता, और नवीनता पढ़ने में
कमरे में क्या होता है, छत के अंदर ही रह जाता है
प्रकृति के सानिध्य में हम जाते हैं तो थोड़ा सा इस वातावरण से डिटैच हो जाते हैं, बाबा भी ले जाते थे ना सुबह सुबह पहाड़ियों पर, वहां पर योग भी करते थे, एक होता है योग करने के लिए पहाड़ी पर जाना, एक होता है पढ़ाई करने के लिए पहाड़ी पर जाना, लोग योग के लिए जरूर जाते हैं, पढ़ाई के लिए कोई नहीं जाता है, किताब लेकर कोई नहीं जाता है किस लिए जाते हैं, बाबा पहाड़ी पर योग करने, खाने पीने और वापस अध्ययन, अलग अलग ग्रुप में बैठकर अध्ययन करना, मुरली का अध्ययन करना, पांच लोग अगर पांच अलग अलग स्थान पर बैठकर मुरली पढ़े और अगर वो पांच लोग बाद में मिलकर चिंतन बैठकर चर्चा करें तो भी ये राज निकल के आ जाएंगे उसमें से, इतना महत्व है प्रकृति के सानिध्य में, छत पर पढ़ना, खुली हवा में पढ़ना, इसका अपना एक महत्व है, तो ये है पढ़ना, सुना ना उसमें क्या नवीनता लाएंगे, दूसरों को सुनाने में
सुनाते वो छोड़ते,
थोड़ा सा कुछ और सुनाए,
नए मिसाल
नए नए मिसाल नए नए उदाहरण, इस मुरली का किसी और मुरली से जोड़ना, बाबा ने इसी संदर्भ में और कब कब क्या क्या कहा, थोड़ा सा भक्ति के उदाहरण, थोड़ा से संसार में इस समय परिस्थितियां क्या है, वो सारी बातें उसमें इंक्लूड करना। तो सुनना, सुनने में क्या नवीनता लाएंगे? मुरली सुनने कान खोल कर दिमाग के पट खोल कर सुनो। और ध्रुव भाई क्या नवीनता लाओगे सुनने में? सुन रहे हैं, कोई तो सुना रहा है, हम सुन रहे हैं। विजुअलाइज करना बीच बीच में, पर वो मुरली की धारा इतनी फास्ट होती है कि एक विजुअलाइज करो कि उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, क्योंकि मुरली में हजारों पॉइंट्स होती है। तुमको लक्ष्मी नारायण बनना है, तुमको सेवा भी करनी है, तुमको अपने आप को आत्मा समझना है, बाप को याद करना है, फिर तुरंत दूसरा
करना है,
फिर गुस्सा नहीं करना है, तुमको दिव्य गुण भी धारण करनी है, तुम्हारा योग इतना होना चाहिए, तुम है पांडव सेना, तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, वो लक्ष्मी नारायण रह गया। इतनी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर पॉइंट आ गई कि हमने सोचा कि अब जो पॉइंट आएगी उसका स्वरूप बनेंगे, उसका स्वरूप बनेगी दूसरा आ गया, उसका स्वरूप बनती तीसरा आ गया,
चक्कर तो वही फिर गया ना।
चलो वो भी अगर कोई करता है तो बहुत ऊंची बात है, अगर करे तो। एक तो आत्मा समझ कर कि मैं आत्मा इस जैसे, चाहे सामने कोई भी बैठकर सुना रहा है, परंतु यही समझो कि शिव बाबा अभी अभी परमधाम से ब्रह्मातन में प्रवेश किया है और हमको सुना रहा है, तो वो ऊपर से वहां प्रवेश करके सुना रहा है, मैं भी ऊपर से अभी अभी आया हूं, जस्ट अभी उसके साथ साथ ही दोनों मिलकर ही आए, वो उधर गया मैं इधर गया। वो उधर प्रवेश किया मैंने इधर प्रवेश किया, वो सुनाने के लिए मैं सुनने के लिए, तो मैं अभी अभी इस तन में आई हूं।
ऊपर आवाज नहीं आती ना, इसलिए नीचे आना पड़ता
है। ऊपर आवाज नहीं आती ना उसकी, उसको नीचे आना पड़ता है।
अलग होने की जरूरत नहीं है।
तो जैसे वो उस तन में आया है, मैं इस तन में आया हूं। एक तो संकल्प ये मुरली सुनते समय, दूसरा भगवान स्वयं पढ़ा रहा है। कई बार मुरलियों में आते हैं तो कौन है टीचर? स्वयं भगवान सामने बैठा है और सिखा रहा है, कुछ तो नई बातें बता रहा है, हिस्ट्री सिखा रहा है, ज्योग्राफी सिखा रहा है, इकोनॉमिक्स सिखा रहा है, सब कुछ सिखा रहा है, भाषा सिखा रहा है, लिटरेचर सिखा रहा है, साहित्य का ज्ञान दे रहा है, ये सारी बातें बता रहा है। दूसरा तीसरा संकल्प
ये
महत्वपूर्ण समय है, ये जो समय है ईश्वरीय पढ़ाई का समय है। हम स्टूडेंट है तो उसमें आ गया, वो टीचर है, हम स्टूडेंट है, हम गॉडली स्टूडेंट है, वो भी एक संकल्प है, हमें भगवान पढ़ा रहा है। और ये जो समय है पढ़ने का समय बहुत महत्वपूर्ण समय, और क्या सोच सकते हैं?
प्रेम के संकल्प। प्रेम के संकल्प,
प्रेम में क्या
कि वो मतलब मुरली सुना बजा रहा,
बजा रहा है और हम झूम रहे नाच रहे गा रहे,
एंजॉय कर
हम एंजॉय करते हैं,
तो उबासी नहीं आएगी,
सरलता से सुने, निश्चय भाव से सुने कि वो जो सुना रहा है वही सत्य है, इसके अतिरिक्त जो कुछ है सब झूठ। जैसे गीता में भी कई एक श्लोक आता है जिसमें बहुत सारी बातें सुनाई है, ये और फिर लास्ट में कहा हुआ है कि हे अर्जुन जो मैंने तुझे सुना है मैं उसे ज्ञान घोषित करता हूँ, इसके अलावा इस संसार में जो भी है वो सब अज्ञान है, ऐसा एक श्लोक है। बहुत सारी बातें उसमें नम्रता ये वो ये, यही ज्ञान है, इसके अलावा जो भी संसार में सब कुछ अज्ञान है। तो इस भाव से सुने कि वो जो भी सुना रहा है संपूर्ण ज्ञान है, साइंस अपूर्ण है, साइंस मनुष्य मत है, साइंस ऊपर नीचे होने वाली है, साइंस अनलॉफुल है, ये लॉफुल है, ये ईश्वरीय मत है, ये संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान। इस भाव से सुने, और कौन से भाव रख सकते हैं?
ये स्मृति रखने के भाव सिर्फ मुझे पढ़ा
रहा है, केवल मुझे पढ़ा रहा है और बाकी
ऐसे ही बैठे
हैं।
मेरे लिए खास स्पेशल स्पेशल ट्यूशन जो होती है ना, जो खास बच्चे होते हैं टीचर उनके घर पे आकर पढ़ाता है, एक होता है जनरल क्लास, एक होता है ट्यूशन, तो ये फ्री में ट्यूशन।
पहले ट्यूशन का जमाना नहीं था ना,
पहले नहीं था। एक ये भी है कि जो कमजोर विद्यार्थी है उनको भी ट्यूशन लगाई जाती है। सोचोगे ठीक है भाई हम तो इतना नहीं है तो खास हमको पढ़ाने के लिए घर पे आता है।
बाबा ने आगे बोला ना, सबसे ज्यादा तुम्हारी ज्योति बुझाई हुई है,
हाँ सबसे ज्यादा
उसी
तुम्हारी,
वजह से करंट
जितनी
बोला
ज्ञान की
जाता है।
आवश्यकता तुम्हें जितनी मुझे है शायद इन लोगों को नहीं, ये तो ऑलरेडी बहुत पढ़े हुए आगे है मेरे से, तो ये खास मेरे लिए आए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा संकल्प है कि बाबा खास मेरे लिए आकर मुझे पढ़ा रहा है। और हो गया ज्ञान अर्थात जानकारी नहीं है केवल, ज्ञान अर्थात बोध, ज्ञान अर्थात अनुभूति, ज्ञान अर्थात जीवंत प्रतीति, ज्ञान कुछ और है, ज्ञान केवल जानकारी हासिल करना नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है ज्ञान, ज्ञान कोई बाहर से नहीं आता है अगर देखा जाए तो, ज्ञान एक आंतरिक अनुभूति है, ज्ञान बहुत ऊंची चीज है, इसके लिए वेदांत शब्द है शास्त्रों में, वेदांत, वेदांत अर्थात ईश्वर को ब्रह्म को जानने के लिए वेदांत से, मैं वेदांत के द्वारा जाना जाने वाला जाने जान जानने योग्य जानने ब्रह्म हूं, ऐसा एक श्लोक है कि जो ब्रह्म है मैं वेदांत के द्वारा जाना जाता हूं, ऐसा लिखा है, वेदांत अर्थात जहां वेदों का अंत हो जाए, वेदांत अर्थात जहां वेद नहीं पहुंच पाए, वेदांत अर्थात जो वेदों से परे है, तो वो वेदांत के द्वारा तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, जहां वेद नहीं है, वेद अर्थात ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान से भी परे, ज्ञानातीत, उससे भी परे मैं हूं, ऐसा श्लोक है कोई एक, तो ज्ञान केवल जानकारी नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है, अनुभूति, ज्ञान अर्थात जीवंत प्रतीति, ये ज्ञान अर्थात स्वबोध, ये ज्ञान की परिभाषा है। तो ये तो हो गया किसमें, ज्ञान में नवीनता, फिर है
जो
योग में, क्या कहा बाबा ने, इस रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो, वो अनुभूति या किताब है उसमें कितने प्रयोग लिखे हैं, 108 प्रयोग लिखे, इतनी मोटी किताब है, अनुभूति या प्रयोग ही प्रयोग है उसमें, किसी भाई ने बनाई है, कमेंट्रीज है उसमें बहुत सारे, क्या क्या प्रयोग किए जाए, तो योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई, परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है, अगर आज आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई, मतलब योग का चार्ट अगर बढ़ रहा है वो भी नवीनता है, ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ, तो ये है योग, तो योग में अलग अलग प्रयोग करना, अलग अलग संकल्प देना, ये एक एक्सपेरिमेंट करना कि ये संकल्प किया तो उसके उससे क्या प्रभाव होता है। अभी परसों हॉस्पिटल में एक लेक्चर हुआ डॉक्टर सुधीर शाह का, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट है और जितनी दादियां है वही प्रकाश मुनि दादी से लेकर सबको देखा है उन्होंने, वो हॉस्पिटल आए थे, उन्होंने एक लेक्चर लिया न्यूरोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस, न्यूरोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस पर, तो उन्होंने उसमें कहा कि तीन स्टेजेस बताइए, एक है प्लेजर सुख जो कि सुख साधनों से मिलता है, दूसरा बताया जॉय, थोड़ा सा निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाती है या क्रिएटिव कुछ किया जाता है तब जॉय, और सबसे ऊंची अवस्था है ब्लिस। तो देखा गया कि इन तीनों अवस्थाओं में ब्रेन के पिक्चर्स लिए गए, तो सबसे पहला जो है लोएस्ट जो तामस में है वो है सुख, मतलब शारीरिक सुख, वो अवस्था में जो ब्रेन के पिक्चर्स लिए गए तो वहां के कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, वो अलग प्रकार के केमिकल है, एड्रेनलिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनलिन, ये इस प्रकार के केमिकल सिक्रीशंस जो केमिकल्स हो रहे हैं, और ब्रेन का जो एरिया प्रकाशित हो रहा है वो कोई और एरिया है, फिर देखा गया उसके थोड़ी ऊपर की अवस्था वो है जॉय, जो कि मिलती है निस्वार्थ सेवा करो संसार में, जो समाज सेवा करते हैं, मतलब शरीर से थोड़ा ह्यूमन लेवल से थोड़ा ऊपर उठ के जो किए जाते, उस समय ब्रेन में कुछ और केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, ऐसे तीन अलग केमिकल्स निकल रहे हैं, और सबसे ऊंची अवस्था है जिसका शरीर से कोई संबंध नहीं है, संसार से कोई संबंध नहीं है, ब्लिस, परमानंद, उसमें केमिकल रिलीज हो रहे हैं कैनबिनॉइड्स या एंडोर्फिन्स जिसको कहते हैं, उन्होंने एक नया केमिकल निकाला है जिसका नाम रखा आनंदामाइड विदेश में रखा गया है ये नाम आनंदामाइड जो कि ब्रेन से सीक्रेट होता है, जो आनंद की अनुभूति कराता है, तो शरीर अलग अलग स्तर पर अलग अलग, और फंक्शनल एमआरआई में पता चला ब्रेन का जो एमआरआई है कि अलग अलग एरिया उसमें ये हो रही है। और ये यहां तक प्रयोग किया गया है कि जो भी संकल्प मन में आता है या इमोशन मन में आता है उसका कुछ ना कुछ प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, एक एक संकल्प का, एक एक संकल्प का। तो ये जो हमारी योग की जो अवस्था है वो ब्लिस की अवस्था है, सबसे सर्वोच्च अवस्था है, उसका एक एक संकल्प का ब्रेन में क्या प्रभाव पड़ता होगा। जो निस्वार्थ संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, शुद्ध संकल्प है, विश्व कल्याण के संकल्प है, उससे ब्रेन की वायरिंग चेंज होती है, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, ब्रेन में स्ट्रक्चर्स में चेंज आता है। और ये प्रूव करने के लिए न जाने कितने उदाहरण है, पहले तो कोई मानता नहीं था पर अभी इस पर ही खोज चालू है, ये आनंदमाइट पर खोज चालू है। आनंदमाइट केमिकल है, केमिकल निकलता है जब हम योग में रहते हैं और उससे बहुत सुख की अनुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ खाता है, चॉकलेट खाता है तो उसको भी सुख मिलता है, इसके लिए तो खाता है क्योंकि वो केमिकल्स निकलते हैं ब्रेन से, जैसे ही केमिकल निकलते तन बदन में सुख की अनुभूति होती है। उसी तरह काम विकार जो है, सारा संसार क्यों काम की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसमें भी ऐसी कुछ अनुभूतियां होती है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलती है वो अनुभूति, वो जो क्रिया है उससे वो अनुभूति नहीं है, परंतु काम का उत्तेजना होते ही यहां आत्मा है उसकी बाजू में पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी गोनेड्स को जाके स्टिमुलेट करती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और वहां से कुछ सिक्रीशंस होता है, तो वो होते ही इधर भी केमिकल्स निकलते हैं, वो केमिकल्स निकलते ही पूरे शरीर में और पूरे मन मस्तिष्क में आनंद का अनुभव होता है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए ईगोलेस स्टेट आ जाती है, कुछ सेकंड के लिए अशरीरीपन का अनुभव होता है। आत्मा, आत्मा की खोज ही आनंद की है, और वो आनंद उस काम विकार में ढूंढ रहा है, क्योंकि उस काम विकार में भी वही झलक मिलती है जो कि आत्मा परमधाम में अनुभव करती है, परंतु वो क्षणिक है, क्षणिक, इतनी क्षणिक है कि वो होते ही तुरंत दुख आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और उसकी प्यास बनी रहती है फिर लंबे समय तक, और वो कितना भी भोगो तभी वो कुछ सेकेंड ही मिलता है, और वही इधर होता है योग में। परंतु योग में ये जो केमिकल्स निकलते हैं, आनंदमाइड, एंडोर्फिन्स भी कहते हैं उसको, गाबा और ये सारे जो निकलते, उसमें बहुत लंबा समय की अनुभूति होती, तो विज्ञान भी उसके नजदीक आ रहा है। तो हमने कहा योग में भी नवीनता लानी है, नए नए संकल्पों से योग करना, योग की विधियों को ढूंढना। एक है, कई लोग कॉमेंट्री लगाकर योग करते हैं, वो कॉमेंट्री पहले ही सुन लो, वहां सुनने से पहले पहले ही उसको, अगर आपको लगता है बहुत अच्छी कमेंट्री है, पहले ही कमेंट्री सुन लो, उसके नोट्स करो, नोट कर लो पॉइंट कि ये पॉइंट उसमें करने हैं, और फिर वो करो। क्या क्या बोलो? तो योग में भिन्न भिन्न प्रयोग करने, एक तो ये शरीर से डिटैच होने के प्रयोग, फरिश्ता स्थिति के प्रयोग, परमधाम की स्थिति, अलग अलग स्थिति, योग के प्रयोग, और फिर कुछ है सकाश देने के प्रयोग, परिश्रता स्थिति में अलग अलग भिन्न भिन्न जगह पर सकाश देना, कोई परिस्थिति है विशेष, वहां तक कोई पर्टिकुलर महकमा डिपार्टमेंट है वहां पर सकाश देना और देखना क्या होता है। जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि हॉस्पिटल में एक ऐसा डिपार्टमेंट वहां बहुत गड़बड़ है, तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वहां सकाश देंगे और क्या रिजल्ट आता है देखते है। क्या होता है अगर वहां सकाश देते हैं तो कलेक्टिव सकाश से क्या प्रभाव, मतलब संकल्प और उसका क्या परिणाम, इसका स्टडी करना, ये उनका प्रयोग, तो हमने प्रयोगी बनने को कहा है ना। तो योग में फिर धारणा में नवीनता, जो धारणाएं हैं 36 गुण उसमें देखना कि ये मुझ में नहीं है, रोज ढूंढना कि इसमें से मुझ में कुछ कौन सा नहीं है और उसको लाने के लिए मैं आज क्या करूं। जैसे ईमानदारी, छोटा सा पढ़ लिया, वहां पर चार्ट लगा हुआ है, जब भी वहां से गुजरते हो एक नजर उसमें डाल के देखना है कि इसमें से कुछ तो है जो मुझे आज लेना है, जिस पे पहली नजर पड़ी जिस धारणा पर, ईमानदारी दिखा, क्या मैं ईमानदार हूं, वफादार ईमानदार वो सब आ जाएगा उसमें। ना फरमान फरमान बरदार जो है बाप बच्चे ही नहीं है बिना, तो उसके संबंध में हमारी कितनी जानकारी है। अगर किसी ने कहा भाई ईमानदारी पर निबंध लिखो तो क्या मैं लिख सकता हूँ? एक, अगर किसी ने कहा ईमानदारी पर भाषण दो क्या मैं दे सकता हूँ? अगर किसी ने कहा कि ईमानदारी पर आपके क्या विचार है तो क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? क्या मुझ में ईमानदारी है? ये सारे प्रश्न उसमें आ जाएंगे। तो ऐसा आएगा कि ईमानदारी क्या बोलूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, तो इसका मतलब अभी ज्ञान की बहुत कमी है। तो ढूंढो फिर कहाँ है ईमानदारी के बारे में, दिव्य गुणों की किताब उसमें ढूंढो कुछ है। कैसे मैं जानकारी हासिल करूं? पहले इंफॉर्मेशन, फिर उसका अनुभव, फिर स्व की चेकिंग, और फिर दूसरों को बता सकता हूं उसके बारे में कुछ। ये सब है धारणा में नवीनता। लास्ट है सेवा में नवीनता। सेवा में तो नवीनता सब करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं, तो चारों ही सब्जेक्ट में स्व के प्रगति में नवीनता। प्रोग्रेस कितनी की, अध्यात्म में आ गए हैं पर उन्नति हो रही है। 10 साल पहले जब ज्ञान में आए थे, 20 साल पहले जब ज्ञान में आए थे, तब और अब ज्ञान में कितनी कितनी प्रगति की है, योग में कितनी प्रगति की है, धारणा में कितनी प्रगति की है, सेवाओं में कितनी प्रगति की है। प्रगति विधि में नवीनता, जो मेथडोलॉजी है, जैसे पहले योग लगाते थे 5 साल पहले, अभी भी वैसे ही लगा रहे हैं, वही चेकिंग और वो रिफ्यूलिंग और उड़ने का टेक ऑफ रह गया, बस फ्लाइट तो आ गई, वही तक तो नहीं रह गया। प्रयोग में नवीनता,
बाबा योग
लगा रहा है उसका निरंतर है योग। औरों को सहज योगी बनाने में किस किस को योगी बनाया, ये बहुत आगे की स्टेज है। और परसेंटेज बढ़ना, माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, यह तो कॉमन चार्ट है। चार्ट लिखने में भी नवीनता, सूक्ष्म अति सूक्ष्म होता जाए चार्ट। किसको दुख नहीं दिया और बहुत खुश है कि हमारा चार्ट तो बहुत अच्छा है, सुख कितनों को दिया, आज योग अमृत वेला किया, टिक मार्क यस यस किया, पर कैसा था वो, उसमें नींद का प्रभाव कितना था, इधर उधर की स्मृतियां कितनी थी, एकाग्रता कितनी थी, वन पॉइंटेडनेस थी, एकाग्र कितना थी बुद्धि, कि यहां वहां के विचार आ रहे थे, जब कल जो हुआ वो याद आ रहा था, वो चेकिंग। यह तो कॉमन चार्ट है, यह तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वो भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो या राजा हो, तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ की समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है? एक है चार्ट यहां बन जाए और सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो भी अच्छी बात है, परंतु अपना चार्ट खुद बनाना है। एक ही चार्ट सबको लागू नहीं हो सकता, लिखेंगे पर वो लिखने जैसा, केवल लिखना है करके, उसके भी मार्क्स है, परंतु अपना चार्ट स्वयं बनाना है अपनी दिनचर्या के हिसाब से। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल है, अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद बनाओ। अपने अशरीरीपन का कौन कौन से समय में मैं अशरीरी बनूं, उसकी स्वयं चेकिंग। कल जो कहा ना, कितना भी व्यस्त हो, खींचातान हो, बुद्धि बिजी है, उसमें मैं कहां अशरीर बन सकता हूं, कौन से वो टाइम्स है, टाइमिंग है, जहां मैं ट्राई करूं, जब बहुत ही बिजी है, 10 लोग खड़े हैं बाहर, 10 लोगों से हम घिरे हुए, क्या यहां पर अशरीर बना जा सकता है? वही तो पीरियड है अशरीर बनने का। बाकी योग में अशरीर बन गए और शाम को बन गए, वो तो कॉमन बात है। मेन तुम्हारा वर्क प्लेस जो है 9 से 5 या जिसका जो टाइमिंग है वो है लाइव टेलीकास्ट, वहां पर अशरीर बन के बताओ। तो और हर 3 मास में रोज का नहीं यहां भेजना, काम बढ़ जाएगा नहीं तो। वो कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं हो, तो स्वयं का पुरुषार्थ है। इस वर्ष में तो आपको इकोनॉमी भी करनी है, इस वर्ष विशेष इकोनॉमी का है, एक नामी और इकोनॉमी। ज्ञान सरोवर बना रहे हो तो सब में इकोनॉमी करनी है। 93 की मुरली, सर्व खजानों में, समय में, संकल्प में, संपत्ति में, सब में इकोनॉमी। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी होकर चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। बहुत लंबा समाचार नहीं लेना, शॉर्ट में। बाबा ने कभी कहा है ओके ओके और नॉट ओके, या लाइन एक हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे है वैसे ही है। कीर्ति कला में तो जाना नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि जैसे है वैसे ही हो। पुरुषार्थ में मिडगेट नहीं बनना, मिडगेट अर्थात बौना व्यक्ति जो होता है ना, छोटा ड्वार्फ, वो नहीं बनना इसमें। मिडगेट अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या करे, क्या क्या नहीं करना। ब्राह्मणों की यह जो भाषा है, क्या करे, कैसे करे, ऐसे करे तो क्या, टैश टैश। लेकिन दूसरों को भी सहयोग दो कि ऐसे करो। समझा क्या चार्ट रखना है? अब देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते, किसने क्या क्या किया जानते तो है ना। कभी बाबा कहते मैं जानी जाना नार नहीं हूं, किसके अंदर क्या चालू है मुझे क्या। कभी कहते मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, और आज कहते हैं आजकल टीवी का फैशन है, बाप दादा के पास भी टीवी बड़ी स्क्रीन। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया। ऐसे मत समझो कि वो भूल गया।
सब तरफ
सब पता रहता है। नाम अनाउंस करें, हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे। तो किसने क्या किया सब जानते हैं, नॉलेज को ज्ञान का सागर है तो सब जानते हैं। अच्छा ओम शांति। ये ग्रुप वन तो ये कल पूरा हो जाएगा। ग्रुप वन चिमन भाई, ग्रुप टू बहन जी आप है ना, पढ़ेंगे जा रहे तो इसको
पढ़ने के बाद जा रहे
हो, कभी जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ लीजिए। नहीं नहीं सुनना अच्छा लगे, कल पढ़ लीजिए, पढ़ाना और अच्छा। हाँ तो फिर हम तो आपसे ही सीखे हैं, तो कल आप पढ़िए फिर उसके बाद में जीवन भाई का। अच्छा ओम शांति। पेज नंबर 96 नहीं चलो देखते हैं।
ఆనందమయుడు వయసే అమృత అమృతవేళ